नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। लोकसभा के कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बार बार हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद शुरू। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में किए गए हमलों में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और मौसम विभाग का कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीटीसी क्षेत्र में सड़क अवसंरचना परियोजना असम माला 3.0, 4 फ्लाईओवर और 2 पुलों की आधारशिला वर्चुअली रखी। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने कोकराझार जिले के बसबाड़ी में रेलवे के पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप की भी आधारशिला रखी और 3 नई ट्रेनों कामख्या चारापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और नारंगी अगरतला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने राज्य के 34 जिलों के लिए 36 नए पुलों की आधारशिला भी रखी। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राज्य के पात्र चाय बागान श्रमिकों को प्रतीकात्मक रूप से भूमि पट्टे सौंपेंगे और 150 मेगावाट की कोपिली जल विद्युत परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी से देशभर के 9.3 करोड़ से अधिक किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री सिलचर में लगभग 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही रसोई गैस एलपीजी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेता संसद परिसर में खाने पीने की चीजें लाकर और व्यवधान उत्पन्न करके अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने अनुदान की पूरक मांगों वर्ष 2025-2026 के दूसरे सत्र पर चर्चा फिर शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य अपने मुद्दे उठाने के लिए खड़े हो गए। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें सदस्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं जो संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की समयबद्धता में सुधार का जिक्र करते हुए बताया कि कुल 77% रेलगाड़ियां निर्धारित समय पर चल रही है। इसके साथ ही रेलवे के 24 डिवीजनों ने 90% से अधिक समयबद्धता का उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है, जो परिचालन दक्षता में सुधार को दर्शाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समयबद्धता का मापन निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के प्रतिशत से किया जाता है और उन्होंने बताया कि रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क के प्रदर्शन में सुधार के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी समय सारिणी में संरचनात्मक समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए आईटी आधारित प्रणालियों और एआई आधारित विश्लेषण सहित उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्य में होने वाली आगामी जनगणना प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंख्या में कमी देखी जा रही है। विधानसभा को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने बताया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे इलाके हैं जहां आबादी में काफी गिरावट आई है, इसलिए वास्तविक जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करने के लिए जनगणना आवश्यक है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जनगणना के बाद अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन डीलिमिटेशन प्रक्रिया भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार जनगणना डिजिटल प्रारूप में कराई जाएगी, जो पारंपरिक तरीकों से एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। श्री खांडू के अनुसार जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की सूची तैयार करना और आवास संबंधी जनगणना शामिल होगी। वहीं दूसरा चरण 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य की आबादी से जुड़ी विस्तृत सामाजिक और आर्थिक जानकारी एकत्र की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 2026-27 के लिए 36,607 करोड़ रुपए का राज्य बजट दो दिन की चर्चा के बाद कल वॉयस वोट के माध्यम से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य बजट 2026-27 की प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला और चर्चा में सदस्यों की रचनात्मक भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, जो वित्त योजना और निवेश विभागों का भी प्रभार संभाले हैं, ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगी। उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में राज्य की आर्थिक योजना और संसाधनों के आवंटन पर असर पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने पिछले वर्ष अचानक आए बाढ़, बादल फटने और चक्रवात मोनथाक से प्रभावित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के लिए 1,912 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्र सहायता को मंजूरी दी है। ये अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में जारी की गई उस धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से राज्यों के पास उपलब्ध है। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्तिया और पक्तिका सहित अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर सैन्य हमले किए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने हमलों को अफगानिस्तान के संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर फिर से बमबारी की। श्री मुजाहिद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कुछ स्थानों पर घरों को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं मारे गए। सेना ने रेगिस्तानों और इलाकों को भी निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य विमान ने कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निजी विमानन कंपनी काम एयर के ईंधन भंडार पर भी हमला किया, जिसमें भंडार में आग लग गई। ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के कारण पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। इससे वैश्विक बाजारों में तेजी आ गई है। तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आ रहा है, जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपातकालीन भंडार का उपयोग करना पड़ रहा है। ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में बदल सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो सकता है। तेहरान ने कहा है कि होर्मुज जल दमरू मध्य पर उसका अभी भी नियंत्रण है और उसने अमेरिका और इसराइल से जुड़े आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी है। बांग्लादेश ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन ला रहे अपने जहाजों को होर्मुज जल धमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने देने का ईरान से अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने कल कहा कि बांग्लादेश ने ईरान से अनुरोध किया है कि वे होर्मुज जल धमरू मध्य से ईंधन और ऊर्जा उत्पाद ला रहे बांग्लादेशी जहाजों को सुरक्षित आने दें। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी कल ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में लू चलने की आशंका है तथा गुजरात में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फेजेस्कियन के साथ पश्चिमी एशिया की गंभीर स्थिति पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की मृत्यु तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।